लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे धर्म संघियों और गुरुकुल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए याचना करते हैं, ताकि वे मानवीय, प्रेरितिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक विचरण के माध्यम से अपनी बुलाहट में विकसित होकर सुसमाचार के विश्वसनीय गवाह बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कार्तिक युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सिवाल होल्ट के साथ हुई बातचीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे से ख्रिस्तों के बारे पूछा जाए तो वह तुरंत कहेगा कि ख्रिस्ते गिरजा जाते हैं, वे अपने गले में क्रूस या रोजरी पहनते हैं, अपने घरों में यीशु की तस्वीर लगाते और उनके सामने प्रार्थना करते हैं, और यह सच भी है। लेकिन अगर यही सवाल किसी युवा से पूछा जाए तो वे इसे पर्याप्त नहीं मानेंगे। पोप फ्रांसिस अपनी धर्म शिक्षा में सच्चा ख्रिस्ते बनने का आह्वान करते हुए कहते हैं, एक ख्रिस्ते जो साहस नहीं करता, अपनी शक्ति को अच्छाई में नहीं बदलता, जो किसी की परवाह नहीं करता, वह बेकार ख्रिस्ते है। और संत योहन के अनुसार एक ख्रिस्ते विश्वास करता है कि ईसा मसीह है और वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। ईश्वर में विश्वास और उनकी आज्ञाओं का पालन वास्तव में ख्रिस्ते धर्म में सिक्के के दो पहलू के समान है। इसलिए यीशु के शिष्य होने का अर्थ है यीशु के साथ संबंध बनाना और सेवा के माध्यम से उनकी आज्ञाओं का पालन करना। ख्रिस्तों के प्रति अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन भारत के कार्तिक युवा इसे किस रूप में देखते हैं, इसके बारे बतला रहे हैं भारतीय कार्तिक युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सिवाल होल्ट। तो लीजिए प्रस्तुत है भारतीय कार्तिक युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सिवाल होल्ट के साथ एक बातचीत, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
टू स्टैंड फॉर पीस, फॉर लव, फॉर जस्टिस, तो वो वर्चुअस के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके खिलाफ गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सही का प्रचार करना, तो इन चीजों में मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का काफी योगदान है, काफी इंक्रीज हुआ है समाज सेवा के प्रति, सोसाइटी के प्रति, या पॉलिटिक्स के प्रति, या नेशन बिल्डिंग के प्रति। इन अलग अलग चीजों में देखा हूँ कि युवाओं का कैसे इंटरेस्ट बदल रहा है। बट जैसे मैंने बोला, चैलेंजिंग है क्योंकि टू बैलेंस योर करियर, आपका इनकम बैलेंस करना, और ये सब जो प्रेशर है सोसाइटी में उसके साथ साथ, पर मैं देखता हूँ कि वो स्ट्रगल होते हुए भी समहाउ कोशिश कर रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी शायद अलाइव है युवाओं में, उस वजह से तो वो खोते नहीं है, वो टाइम टू टाइम वो क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड कि चर्च क्या बोलता है, क्यों बोलता है, अलग अलग मुद्दों को समझना। क्योंकि मेरा जितना इंट्रैक्शन रहा युवाओं से, हमेशा ये सवाल उठते हैं कि चर्च का या कलीसिया का इस टॉपिक को लेके क्या कहना है, और तो वो उससे मुझे ये फीलिंग आता है कि युवाओं में एक एटलीस्ट इंटरेस्ट है टू डिबेट एंड टू डिस्कस एंड यू नो समझने के लिए कि नहीं सिर्फ मेरे मन में जो आया या फिर मेरे आसपास के जो लोग बोल रहे हैं उससे मैं प्रभावित ना होकर वास्तविकता में विश्वास सिखाता है या फिर कलीसिया सिखाता है या फिर बाइबल या गॉस्पेल वैल्यूज सिखाता है, मैं उसको कैसे लेके आगे बढ़ूं। तो ये प्रयास और ये उसके प्रति एक एक जील या बोलते हैं वो फायर मुझे दिखता है युवाओं में
जी।
तो इसके प्रति जैसे मैंने काफी युवाओं से ऐसे रियल स्टोरीज सुने थे कि अब उनका नजरिया इवन विश्वास के या कलीसिया के प्रति इस मामले में बदल रहा है कि फॉर मी टू बी लाइक जीसस इज टू बी आउट देयर। अगर मैं किसी गरीब की मदद कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए ईसाई होना है
जी।
भले ही मैं चर्च डेली ना जाऊं, पर अगर मैं डेली किसी एक इंसान की मदद कर सकूं या किसी को मैं एक मुस्कुराहट लाऊं, या मैं जब कहीं गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाऊं, तो वो मेरे लिए ईसाई होना है या जीसस की तरह होना है। तो ये एक नजरिया जो मैं देखता हूँ कैथलिक युवाओं में, मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है। समवन हु इज रियली लेड बाय द स्पिरिट, कि मैं कैसे उस चीज को जीऊं और फिर दूसरों को उसके बारे में बताऊं।
जी, अगला सवाल है कि कलीसिया युवाओं से बहुत उम्मीद करती है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि युवा कलीसिया से क्या आशा करते हैं?
तो युवा कलीसिया से मेरे ख्याल से दो ही चीजों की आशा करती है। एक है ऑथेंटिसिटी, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता है, पर ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्टी, मेरे ख्याल से ये दो चीजें हैं। एक सच्चाई, और सच्चाई के लिए खड़े होना और सच्चाई को जीना भी, और दूसरा ऑथेंटिसिटी, आई एम नॉट श्योर उसका हिंदी वर्ड, बट या टू बी ऑथेंटिक ना, कि कैसे हम कैसे कलीसिया एक ऑथेंटिक विटनेस हो सकती है। तो जैसे मैंने ये अभी एग्जांपल दिया कि सिर्फ डेली चर्च जाने से हम ईसाई, ये युवाओं के शब्द हैं जो मैंने सुने हैं, और इंडिया में भी ये शायद मैंने सिनड में भी बोला था, या फिर इंडिया में भी कई सीसीडीआई वगैरह के डॉक्यूमेंट्स में ये रिकॉर्डेड है, कि मेरे लिए सिर्फ डेली चर्च जाने से मेरा ईसाई होना पूरा नहीं होता है, पर मैं उस चीज को कैसे जीऊं, कैसे मैं बाहर समाज में किसी गरीब की सहायता करूं, कैसे मैं एजुकेशन हेल्थ में योगदान दूं। कोविड के टाइम जैसे दिखा था कि कई युवाओं ने अलग अलग तरीकों के द्वारा अपने अपने जगह पे वो साहस किया कि नहीं, हम बाहर जाके हम करेंगे, मदद करेंगे, चाहे वो खाना बांटने में हो, सपोर्ट करने में हो, ऑक्सीजन के लिए, या फिर काफी अलग अलग काम के लिए। तो उसके द्वारा वो दिखता है कि ना, मतलब युवाओं को वो ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो वो ये उम्मीद करते हैं कलीसिया से कि सिर्फ प्रचार करना ही नहीं, पर उसको कैसे जीना है और कैसे उसमें लोगों को वो मौका भी देना है कि उस चीज को कैसे समझ के, कैसे इंटरप्रेट करके फिर उसको वी लिव इट आउट। तो ये एक मेजर चीज युवाओं से आया है। दूसरा है कि ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट टाइम के वर्तमान परिस्थितियों में कैसे उन वैल्यूज को जीना है। तो सिर्फ बाइबल जानना ही काफी नहीं है, पर उसमें से वो वैल्यूज को निकाल के अभी के परिस्थिति में, जब टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग है, जब समय की बहुत कमी है, जब लोग इतना जब इतना अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, जब माइग्रेशन पीक पे है, जब वर्क प्रेशर और ये सब, और इकोनॉमी इतना अनस्टेबल है पूरे दुनिया में, तो उसमें हम कैसे इस विश्वास को जिए। तो वो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उम्मीद है युवाओं में, कि क्योंकि समय के चलते काफी मतलब अभी में वो पॉसिबल नहीं होता है टू रिमेम्बर, जो शायद मैंने कैटेकिज्म बचपन में सीखा होगा वो शायद 10-15 साल बाद नहीं होगा दिमाग में, क्योंकि उसके बीच में पढ़ाई हुआ है, बाहर समाज में इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ काफी अलग अलग चीजें सुनने को मिली है, पर उस सब के बीच में मतलब ना, कैसे वो वैल्यूज को मैं अभी के समय में जिया, क्योंकि इन चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता जैसे टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उम्मीद है युवाओं से, जो मैंने खुद सुना है काफी युवाओं से जब मैंने ट्रैवल किया था एशिया में, कि सिर्फ बाइबल बताना काफी नहीं है, पर उसको अभी के समय में कैसे जिए। और वो मेरे ख्याल से तो वो ये दो चीजें मेरे ख्याल से उम्मीद है युवाओं की, एक ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी, एंड दूसरा हाउ टू लिव द गॉस्पेल वैल्यूज इन द प्रेजेंट टाइम।
पर्सिवल होल्ट जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
एक आग हर दिल
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका उड़ते पंछी। लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, एक समय था जब हमारे समाज में परिवार की संरचना संयुक्त परिवार की थी। परिवार में दादा दादी, माँ पापा, चाचा चाची सभी एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते थे। बच्चों को दादा दादी कहानियाँ और लोरियाँ सुनाया करते थे। दादा दादियों को अपने पोते पोतियों से बहुत ज्यादा लगाव रहता है। उसी तरह पोते पोतियों को भी अपने माता पिता से ज्यादा दादा दादियों से लगाव रहता है। आज आधुनिकता और नौकरी के चक्कर में बहुत सारे परिवार बड़े शहरों और विदेशों में पलायन कर रहे हैं। बच्चों को नए परिवेश में, नई भाषा, नई संस्कृति में खुद को ढालना पड़ता है। अपने दादा दादी की याद तो जरूर आती होगी। उधर घर पर दादा दादी अकेले रह जाते हैं। खाली घर उन्हें काट खाने को दौड़ता है और वे अपने पोते पोतियों को देखने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में उन्हें विकल्प ढूंढना चाहिए। उसी तरह जिस तरह आज की नाटिका में बुजुर्ग दंपति साधना और राय साहब ने ढूंढा, तो लीजिए प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका उड़ते पंछी।
अरे बच्चों, जरा रहम करो इस माली बाबा पर। क्यों रोजाना घुसाते हो उस हरे बंगले में? स्कूल का बगीचा क्या कम पड़ता है खेलने के लिए? चलो, अरे निकलो बाहर यहां से, तुम निकलो यहां से। एक तो यहां की मालकिन हर दर्जे की खड़ूस औरत है, जब देखो तब छोटे बच्चों पर चिल्लाती रहती है।
ए माली बाबा,
लो हो गई शुरू। अब आधे घंटे तक रामायण सुनते रहो इनकी। कौन सा पौधा कहाँ से लाया था, कितना महंगा था, बच्चों को शऊर नहीं है, तुम दिन भर करते क्या हो, बस यही सुनने की नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर। स्कूल में किसी को कोई तकलीफ नहीं, सारा का सारा हिसाब यहीं पर होता है मेरा।
अरे मैं कब से पुकार रही हूँ, सुना ही नहीं देता क्या? आज फिर बच्चे आ गए थे मेरे बगीचे में। ये घर के पास स्कूल ना हुआ, रोजाना का झंझट हो गया। तुम्हारे इन बच्चों को तो जरा भी शऊर नहीं है और तुम दिन भर करते क्या रहते हो?
भाई साहब, अभी तो निकाला बच्चों को यहाँ से, और कुछ नहीं तोड़ा उन्होंने आपके बगीचे से, बस अब आज माफी दे दो। रोज रोज की यही चिक चिक है। दोनों बूढ़ा बूढ़ी इस महल नुमा मकान में अकेले रहते। हम उम्र में तो वैसे भी इंसान अपने नाती पोतों को खिलाता ही है ना, ये अजीब ही औरत देखी है मैं।
अब बस भी पढ़ो, बड़बड़ाना माली बाबा।
अरे राय साहब आप?
हाँ माली बाबा, और कैसा चल रहा है आपका?
अरे क्या खाक चल रहा है राय साहब, आपके बंगले में रोज रोज बच्चे चले आते हैं और मैडम जी नाराज हो जाती हैं। बस हमारी यही तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
अब बच्चे और बूढ़े एक ही जैसे हुए ना माली बाबा, छोड़ दिया करो।
छोड़ ही तो देता हूँ मालिक, तभी तो टिका हुआ हूँ अभी तक। अच्छा साहब, अब चलता हूँ।
कितनी मुश्किल से कारपेट ग्रास लगवाई थी, सारे बच्चे उस पर चल चल कर खराब कर देते हैं, पनपने ही नहीं देते।
अरे किस पर बिगड़ रही हो साधना, वो भी सुबह सुबह?
अरे यहाँ कौन मेरा सगा है जी जिस पर बिगड़ लूंगी, वही स्कूल के बच्चे हैं। कितनी बार मना करती हूँ, जब देखो तब यहाँ आ जाते हैं।
अरे साधना, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो, भगवान के घर के फूल हैं, उन पर क्या गुस्सा होना।
आप होते रहिए उन पर खुश, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है जब वे मेरे फूलों को नोच कर चले जाते हैं।
भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो साधना, सजा सवरा हमारा गार्डन, इसका आनंद लेने के लिए बस हम दोनों, हमारे बच्चे ठहरे विदेश के निवासी, और इन्हीं को देखकर हमारे स्वीटी और टिन्नू की याद आ जाती है। कितने अरसे से नहीं देखा है उन्हें, कितना अच्छा लगता था जब गोदी में लिए हुए उन्हें इसी बगीचे की सैर करवाता था। अरे साधना, तुम्हारी आंखों में आंसू?
और नहीं तो क्या, इधर स्वीटी और टिन्नू की बातें करेंगे, मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? मेरा मन भी तो करता है उन्हें गोद में लेकर खिलाऊं, दादी बनने का पूरा पूरा आनंद लूं, लेकिन हमारे बच्चों को कहां किसी बात का फर्क पड़ता है।
यही तो मैं कहना चाहता हूं साधना, इन नन्हे देवदूतों को ही स्वीटी और टिन्नू समझो।
अरे ऐसे कैसे समझ लूं जी, किसी को भी अपने नाती पोते। मैं तो कल ही स्कूल में शिकायत करने वाली हूँ कि इन बच्चों का हमारे बगीचे में आना बंद करे।
अब तुम्हें कौन समझाए, ठीक है जैसी मर्जी आए वैसे करो। कौन है?
जी मैं कुसुम सिन्हा, पास के स्कूल से आई हूँ। मैडम ने कुछ शिकायत की थी।
अरे हमारी मैडम ने शिकायत की होगी बच्चों के बगीचे में आने को लेकर ना।
जी हाँ यही शिकायत है।
आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। पता नहीं ये साधना को बीच में ही क्या हो जाता है, अच्छे खासे प्यारे बच्चे घर में आते हैं। साधना, अरे भाई साधना
जी,
कोई मैडम मिलने आई है, जल्दी आओ।
कहीं बाहर हो तो मत बुलाइए।
अजी नहीं नहीं, कहीं बाहर क्यों, हमें ही तो जरूरत है। अब मैंने ही शिकायत की थी आपके स्कूल में। दरअसल आपके स्कूल के कुछ बच्चे हर दिन मेरे बगीचे में आकर उत्पात मचाते हैं।
जी मैडम, मैंने पढ़ा है आपकी शिकायत को और ये ठहराया कि आपसे मिलने से पहले इन बच्चों से मिलना जरूरी है।
उसमें बच्चों से क्या मिलना?
जी मैडम, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब उन बच्चों से मिली तब कुछ और ही चित्र सामने आया।
कैसा चित्र मैडम जी?
दरअसल उस भीड़ में दो बच्चे हैं जो कुछ दिनों पहले ही अपने माता पिता के साथ अलग रहने आए हैं। उनके दादा दादी दूर किसी गांव में रहते हैं, लिहाजा बच्चों को दादा दादी की बड़ी याद आती है और वे आपके बगीचे में आ जाते हैं। वे बच्चे आप लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, आप करेंगे?
ओह, कौन है वे बच्चे? सुनिए जी, क्या हमारे टिन्नू और स्वीटी भी ऐसे ही दादा दादी को खोजने निकलते होंगे? हे भगवान, उन्हें किसी भी बुरी नजर से बचाना।
अरे भाग्यवान, उनके लिए दुआ मांगने से पहले अपनी झोली तो भर लो।
मुझे समझ में आ गया जी, आपके जैसी दृष्टि मुझे भी मिल गई है। अब मैं भी इन नन्हे बच्चों के साथ खुशी से रहूंगी, इन्हीं को अपने स्वीटी और टिन्नू मानूंगी।
जी माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं था। दरअसल माली बाबा ने बताया कि आपके बगीचे में कुछ बच्चे रोजाना आ जाते हैं, बस इसीलिए।
अरे 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 नहीं बेटी नहीं, मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, तुमने मेरी पत्नी को सत्य परिस्थिति की जानकारी दे दी।
मैडम जी दरअसल मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं और हमारे नन्हे नन्हे पोते पोती, मुझे उनकी बहुत याद आती है, उन्हें नहीं देख पाती ना। लेकिन अब आपने बताया कि वो बच्चे दादा दादी को खोजने आते हैं और मैं भी कितने कड़े मन की हूँ जो घर आए हुए इस प्रसाद को नकार रही हूँ। हो सकता है मैं इन बच्चों को दादा दादी के रूप में अपना कर उधर स्वीटी और टिन्नू के लिए किसी और घर का दरवाजा भी खोल दूं।
बिल्कुल ठीक कहा साधना तुमने, धन्यवाद मैडम जी, आपके कारण देर से ही सही पर साधना की आंखें तो खुल गई।
उड़ते पंछी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे चैतन्य शर्मा, अर्पना सिंह, संदीप दुबे और अंतरा करवड़े। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।